नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अतहर सईद। सरकार ने ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में चार नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की स्वीकृति दे दी है। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 4,594 करोड़ रुपए है। आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के निर्णय की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए मजबूत तंत्र तैयार कर रही है।
आज चार सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, दो ओडिशा में, एक पंजाब में और एक आंध्र। 2022 में जब सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शी नेतृत्व है जिसके तहत उन्होंने एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के तहत काम चालू किया और कंप्लीट इकोसिस्टम पे ध्यान देने का प्रधानमंत्री जी का हमेशा मार्गदर्शन रहा। तो अब कंप्लीट इकोसिस्टम डिजाइन, वेफर, वेफर फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स, असेंबली, टेस्टिंग, फाइनल प्रोडक्शन, हर चीज पे, इलेक्ट्रॉनिक्स के हर सेक्टर पे, हर डायमेंशन पे काम चल रहा है।
श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में विनिर्माण में 6 गुना तेजी आई है।
मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहां 2 थे 11 वर्ष पहले, आज 300 से अधिक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भारत में हैं और बढ़ते जा रहे हैं। उनका इकोसिस्टम बढ़ रहा है, उनके डिफरेंट कंपोनेंट अलग अलग जगह पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो उसका ओवरऑल एक बहुत अच्छा देश भर में इकोसिस्टम होने लगा है। मोबाइल का प्रोडक्शन 28 गुने बढ़ा है, अब 5.5 लाख करोड़ का मोबाइल का प्रोडक्शन होने लगा है। मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट 127 गुना बढ़ा है, 2 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है।
श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने लखनऊ मेट्रो के चारबाग से बसंत कुंज तक 1B चरण को भी मंजूरी दे दी है, जिस पर 5,801 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत वैज्ञानिक जिज्ञासा को बढ़ावा देने और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 18वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड के दौरान 64 देशों के 300 से अधिक प्रखर प्रतिभाओं से वर्चुअली जुड़ने पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत सहयोग की शक्ति में विश्वास करता है और ये ओलंपियाड इसी भावना का परिचायक है। संसद ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 को पारित कर दिया है। आज इस विधेयक को राज्यसभा में पारित किया गया, लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। लोकसभा ने भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 पारित कर दिया है। ये विधेयक बंदरगाहों से संबंधित कानूनों को सुदृढ़ करने, एकीकृत बंदरगाह विकास को बढ़ावा देने, व्यापार को सुगम बनाने और भारत के समुद्र तट का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की है। लोकसभा में आज पहले स्थगन के बाद कार्यवाही फिर शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने इस संबंध में जानकारी दी। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लोकसभा की बैठक अब सोमवार को सुबह 11 बजे शुरू होगी। प्रवर्तन निदेशालय अवैध सट्टेबाजी ऐप परीमैच से जुड़े धन शोधन के एक मामले में मुंबई, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, मदुरै और सूरत में विभिन्न स्थानों पर तलाशी ले रहा है। निदेशालय के अनुसार प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि ठगे गए उपयोगकर्ताओं से 2000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि अवैध खातों में जमा की गई, जिन्हें बाद में कई भुगतान माध्यमों और घरेलू धन हस्तांतरण एजेंटों के जरिए स्थानांतरित किया गया। भारत ने न्यूयॉर्क में समुद्री सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कानून और UNCLOS के सिद्धांतों पर आधारित एक स्वतंत्र, खुली और नियंत्रित समुद्री व्यवस्था के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए विदेश मंत्रालय के सचिव तन्मय लाल ने भारत के महासागर दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण बताया। भारत की नम्रता बत्रा ने आज चीन के चेंगदू में विश्व खेलों की वुशु स्पर्धा में भारत के लिए पहला पदक जीतकर इतिहास रच दिया। जम्मू कश्मीर में जम्मू क्षेत्र के विभिन्न जिलों में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे अचानक बाढ़ आ गई। इससे सरकारी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा और आज कुछ जिलों की सड़कें और शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।